एक महीने बाद अरुणिमा को यहाँ से गए एक महीना हो गया, और जिस दिन अरुणिमा यहाँ से गई थी उसी दिन आस्तिक के बाकी सारे भाई बहन भी यहाँ से चले गए थे। पृथ्वी और जानवी दिल्ली शिफ्ट हो गए थे और कीर्ति रजत के साथ उसके घर पर थी। प्रणाली सक्षम के साथ थी, लेकिन इन सब के बावजूद एक और चीज़ हुई थी, और वो ये थी किसी ने भी ना तो आस्तिक से बात करने की कोशिश की और ना ही उससे कॉन्टैक्ट किया था। यहाँ तक कि बीच में जब कीर्ति की तबीयत खराब हो गई थी तो आस्तिक ने उसे फ़ोन किया था, लेकिन फ़ोन ज्योति ने उठाया था और कीर्ति ने ठीक है बस इतना कहकर फ़ोन रख दिया था, क्योंकि कीर्ति आस्तिक से बात नहीं करना चाहती थी। आस्तिक इतने बड़े महल में अब अकेला ही रहता है नौकरों की फ़ौज के साथ। वो नौकर जो इंसान नहीं रोबोट हैं और आस्तिक के हुक्म का ही पालन करते हैं, उनमें जैसे जज्बात नहीं है। आस्तिक का हर ऑर्डर उनके लिए उनके भगवान का ऑर्डर होता है, लेकिन वो उसे सिर्फ ऑर्डर की तरह ही करते हैं। कोई भी आस्तिक के शब्दों को फीलिंग के साथ नहीं समझता है। आस्तिक की रातें अब ज़्यादातर किसी नाइट क्लब के प्राइवेट एरिया में गुजरा करती थी, जहाँ पर वो नशे में धुत अपने दिल की आग को शांत कर रहा था, लेकिन जितना वो इसे शांत कर रहा था ये उतनी ही भड़कती जा रही थी। आस्तिक को लगा शायद ये सब इतने समय तक अरुणिमा के पास रहने का असर है, अगर वो किसी दूसरी लड़की के पास जाएगा तो अरुणिमा को भूल जाएगा। यही सोचकर उसने कई बार प्रोस्टिट्यूट को भी हायर किया था, लेकिन जैसे ही वो लड़कियां आस्तिक के पास आकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती, आस्तिक को ऐसा लगता कि उसके शरीर पर कोई गंदगी रेंग रही है, और वो उन लड़कियों को भगा देता था। उन लड़कियों से सिर्फ पैसों की और जिस्म की भूख महसूस होती थी, लेकिन अरुणिमा वो एक मासूम सी आत्मा थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी जो हमेशा आस्तिक को अट्रैक्ट किया करती थी। आस्तिक के सामने अब कितनी ही लड़कियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन उसे ऐसा लगता था अरुणिमा से खूबसूरत लड़की इस दुनिया में ही नहीं है। उस खाली महल में जो अब वीराना हो गया था, वहां पर कोई भी नहीं था। पहले जब आस्तिक घर आता था तो हॉल में बैठी जानवी, कीर्ति और अरुणिमा के हंसी मजाक की आवाज़ उसके कानों में आया करती थी, लेकिन अब जब वो घर आता है तो ये खाली घर उसे काटने को दौड़ता है। ऐसा लगता है यहाँ के हर कोनों से उसके परिवार की महक आ रही है, लेकिन जब आस्तिक उस तरफ देखता था तो अब वहां पर कुछ भी नहीं था। ना तो जानवी किचन में कुछ बना रही थी और ना ही अरुणिमा कीर्ति के सर पर तेल लगा रही थी। लड़खड़ाते हुए पैरों से आस्तिक अपने कमरे में पहुंचता है। उस कमरे में एक भीनी भीनी सी खुशबू अभी भी मौजूद है जो अरुणिमा के होने का एहसास करवा रही है, लेकिन सिर्फ एहसास ही करवा सकती है क्योंकि अरुणिमा तो अब नहीं है। अरुणिमा के बिना ये कमरा बहुत ही सूना सूना और खाली लग रहा है। वैसे तो इस कमरे में बहुत सी कीमती चीज़ रखी हुई है, लेकिन जो इस कमरे की सबसे कीमती चीज़ थी वो अब इस कमरे में नहीं थी। अरुणिमा तो चली गई थी, लेकिन उसकी मीठी मीठी खुशबू अभी भी उन सिलवटों में मौजूद थी जिससे लिपट कर आस्तिक सोया करता था। आस्तिक लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ गिरता पड़ता हुआ क्लोजेट रूम तक पहुँचता है और अलमारी खोलता है। यहाँ पर अरुणिमा की पुरानी साड़ियाँ और सूट रखे हुए थे। उनमें से अरुणिमा की एक साड़ी लेता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। अरुणिमा अपने साथ कुछ भी नहीं ले गई थी, उसका सारा सामान उसके कमरे में ही रखा हुआ था। आस्तिक अरुणिमा की साड़ी को अपने गले से लगाता है और उसकी खुशबू को महसूस करने लगता है। आस्तिक का चेहरा इस समय बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो अरुणिमा को अपने पास चाहता है। उसे अरुणिमा की याद आ रही थी, उसका मासूम चेहरा, उसकी मीठी सी आवाज़, उसका प्यारा सा एहसास अब आस्तिक की चारों तरफ घूम रहा था। अरुणिमा की साड़ी को अपने सीने से लगाए आस्तिक अपने बालों को नोच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है, पर जितना वो खुद को शांत करता उतना ही ये तड़प और बढ़ती जाती है। अरुणिमा के अलावा एक और जगह है जहाँ पर आस्तिक को शांति और सुकून मिलती है, वो है उसकी माँ का कमरा। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अरुणिमा की साड़ी को अपने सीने से लगाता हुआ अपने कमरे से निकलता है और अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वो किसी गली के आवारा शराबी की तरह लग रहा था, क्योंकि रास्ते में आ रही न जाने कितनी चीज़ों के साथ आस्तिक टकराया भी और ज़मीन पर भी गिरा। उसे चोट भी लगी और वो बदहवासी में भी चल रहा था। अपनी माँ के कमरे में पहुंचकर आस्तिक देखता है उसकी माँ की तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई है और हमेशा की तरह आस्तिक को देखकर मुस्कुरा रही है। आस्तिक अपनी माँ के पास जाता है और उनकी तस्वीर के नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है। वो अरुणिमा की साड़ी को अपने सामने रखता है जैसे कि अरुणिमा भी उसके साथ बैठी हुई है। एक नौकर शराब की बोतल और ग्लास आस्तिक के पास रखकर तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि वो आस्तिक के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। शराब की दो चार घूंट अपने गले से नीचे उतारने के बाद आस्तिक लड़खड़ाती हुई जुबान में अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने उस औरत को सज़ा दे दी है, मैंने उसकी बेटी को बिल्कुल वैसे ही अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया था जैसे कि तुम्हारे साथ हुआ था। जैसे तुमने अपने बच्चों को अकेले पाला था ना, वैसे वो लड़की भी अपना बच्चा अकेले पालेगी। जैसे हमारे साथ हमारा बाप नहीं था, उसके बच्चे के साथ उसका बाप नहीं रहेगा।
जो हमने झेला है हमने बर्दाश्त किया है, वही अब वो बर्दाश्त करेगी। मैंने सही किया ना माँ? अगर मैंने सही किया है तो फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? मैं शुरू से यही तो करना चाहता था। मैं शुरू से इसी दिन का तो इंतज़ार कर रहा था। जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा मेरे अंदर है, मैं उसी को तो अपने दिल से निकालना चाहता था। अब जब मेरा बदला पूरा हुआ है तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों मेरा दिल जल रहा है? माँ बताओ ना, मैंने सही किया है ना? तुमने सही नहीं किया है। आस्तिक इस आवाज़ से चौंक जाता है और पलट कर दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर ताई खड़ी थी। ताई को एक बार फिर अपने सामने देखकर आस्तिक का चेहरा हैरान हो जाता है और वो यकीन करना चाहता है कि ताई सच में वापस आई हैं। वो अपनी जगह से खड़ा होने ही वाला था कि दोबारा से लड़खड़ा कर नीचे गिरता है। ताई आगे आती है और उसके सामने खड़े होते हुए कहती है, तुम ऐसे रास्ते पर चल पड़े हो जहाँ पर तुम्हारा गिरना तय है।